Senti. आज सुबह को प्रातः की क्लास में मुरली सुनी है, अव्यक्त बाबा की मुरली सुनी ना, फिर उसको रिपीट किया, आपस में किया रिपीट, ग्रुप वाइज रिपीट किया, और उसके बाद क्या किया, नाश्ता किया, और क्या किया, हाँ, कर्म सेवा की, और क्या किया, हाँ, सेवा करते समय अव्यक्त वाणी का मथन किया या आपस में रिपीट किया, फिर से अपने से मथन किया। पूछने का भाव यही था कि मुरली रिपीट हुई आपस में, और फिर जो बाबा ने कहा वो कितनी याद रही, क्या क्या किया, वो तो दिनचर्या हमें भी पता है कि सेवा की होंगी, नाश्ता किया, ये सब किया, लेकिन मैंने क्या किया, जो मुरली सुनी उसको बार बार उनकी कोई कोई बात हमें याद आई, कोई ऐसे बाबा के बोल विशेष ध्यान पे आए, कोई ऐसी पॉइंट जिसका हम समझें कि चलते फिरते भी हमें ध्यान पे रहे और अभ्यास करें, ऐसा हमने किया। जबकि आप लोग यहाँ कोई बुद्धि पर बर्डन नहीं है, है कि कोई बुद्धि पर जवाबदारी, सेंटर पर फिर भी थोड़ा जवाबदारी होती है, यहाँ कौन सी जवाबदारी है आप सबके ऊपर, है जवाबदारी पर कौन सी, हाँ, कौन सी जवाबदारी है यहाँ आप सबके ऊपर, है जवाबदारी, हाँ, है, सोच रहे हो है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो बोला नहीं है, फिर मैंने सोचा नहीं है, हाँ, परिवर्तन करने की जवाबदारी है। और बोलो क्या क्या जवाबदारी है, पढ़ाई की क्या जवाबदारी, हाँ, यहाँ हमारे पर जवाबदारी है जो हम चाहते हैं, पुरुषार्थ में जो हम तीव्रता चाहते हैं, पुरुषार्थ की जो हम सफलता चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, चाहते हैं ना, तो यहाँ हमारे पर जो टाइम मिला है अभी आप लोगों को ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग में हम क्या सिखा रहे हैं, ज्ञान आपका सुना हुआ है, मुरली आप सुनते रहते हैं, समझी हुई है हर बात का, अगर हम प्रश्न पूछे तो ज्ञान के रीति से आप अच्छे अच्छे जवाब दे सकते हो, इतना हम समझती है, क्योंकि अधिकतर 3 साल 4 साल 5 साल चाहे 2 साल वाली भी हो, कोई है थोड़ी 1 साल और कम समय वाली, लेकिन अगर आप ध्यान से प्रश्न को सुनो तो ज्ञान का जवाब दे सकते हो। परंतु विशेष ट्रेनिंग में क्यों बुलाया गया है, विशेष ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि एक तो अपने को कंपेयर करो, वहां जो सुनते थे और जिस प्रकार हम उसको अपने में धारण करने का प्रयत्न करते थे, और यहाँ जो हमें पुरुषार्थ की रीत बताई जा रही है वो अपने में कंपेयर करो, और साथ साथ कि जो बताया जा रहा है या जो हम पुरुषार्थ की रिजल्ट चाहते हैं वो हम यहाँ अपने पर ऐसा अटेंशन दें जो हमें रिजल्ट अर्थात पुरुषार्थ की सफलता हमें मिल सके, हम स्वयं से संतुष्ट रहें, बरोबर जो पुरुषार्थ हम चाहते हैं, जो हम सदा अपने को उमंग में रखने चाहते हैं, जो हम ऊंची ऊंची स्टेजेस योग की बातें सुनते हैं और वहाँ टाइम नहीं मिलता है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, परंतु वहाँ इतना नहीं कर पाते हैं कुछ दुनिया के कारण, क्योंकि घरों में रहते हैं और कुछ टाइम हर प्रकार से व्यस्त होने के कारण हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमारा फुल टाइम पुरुषार्थ के लिए है। चाहे भले आप लोगों से स्थूल सेवा कराई जाती है, कोई भी काम दिया जाता है, वो तो शरीर को जितना हम बिजी रखेंगे, शरीर भी कर्म इंद्रियों से जितना हम काम कराएंगे उतनी हमारी कर्म इंद्रियां भी मजबूत होंगी, स्थूल में भी मजबूत होंगी। और सूक्ष्म में इसका क्या लाभ है? जितनी हम यज्ञ सेवा करते हैं, स्थूल यज्ञ सेवा, उसका क्या लाभ है? हाँ, भाग्य बनता है, लेकिन कर्म इंद्रियों में अंदर ही अंदर परिवर्तन है। कर्म इंद्रियां जितनी हम यज्ञ सेवा करेंगे ना, उतनी अंदर से समझो जो भी हमारा कर्म होता है, चाहे कोई पाप कर्म हुआ है, चाहे कोई विकर्म हुआ है, चाहे कोई भूले, छोटी मोटी भी भूले होती है, समझो पाप कर्म नहीं है, विकर्म नहीं है, पर छोटी मोटी भूले तो होती ही है ना, जीवन भर में तो हुई है ना, तो वो सब जो हमारा बोझ है ना, यज्ञ सेवा से भी अंदर ही अंदर हमारा चुकू होता जाता है, रिटर्न हो जाता है ना, क्योंकि भगवान के यज्ञ की हमने सेवा की। बात चल रही थी कौन से यज्ञ सेवा से लाभ, क्या क्या फायदे होते हैं, कर्मणा सेवा कहने में स्थूल सेवा आती है, परंतु यज्ञ भगवान कहते हैं, सुना है कभी ऐसा ना? यज्ञ को भी यज्ञ भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग में, क्योंकि यज्ञ आकर के भगवान ने रचा था, जिसका यादगार ये यज्ञ चल रहे हैं। तो यज्ञ भगवान के अंदर, या तो कहे भगवान के द्वारा रचे हुए यज्ञ में जब हम सेवा करते हैं, तो बाबा का तो कहना है एक करो तो मैं 100, एक कदम आगे चलो तो मैं 100 कदम आगे आता हूँ, एक कणा करो तो मैं 100 कणा देता हूँ। आज के मुरली में एक बड़ी अच्छी बात थी, आती है याद? अभी अभी इन्हीं शब्दों पर एक का पदम गुना, तो उसका कौन सी बात बताई थी बाबा ने? हाँ, एक का पदम गुना कौन सी बात बताई? एक एक बोले, दूर वाली उठ के बोले, कौन सी बात पर ये बात आई जो अभी अभी हमको बोलते हुए याद आ गई? लोगों को मुरली पर पुरुषार्थ करना है। मैं समझती हूँ प्रत्यक्ष फल पर बात आई थी, आई याद, राइट है? हो सकता है कि हमें भी पूरी न याद हो, पर मुझे जहां तक याद आई बात करते, प्रत्यक्ष फल पर बात आई थी, जिस पर ही ये सारी बात आई है। हमारी तो थी एक का पदम गुना, लेकिन ये आज की मुरली में संगम युग पर पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल मिलता है, और बाप कितना प्रत्यक्ष फल देते हैं, कितना फल देते हैं, एक तो प्रत्यक्ष फल और कितना देते हैं, उस पर मिसाल था बीज और फल का, आई याद? अब पूरी कौन रिपीट कर सकता है, पर मैं अभी नहीं इस बात को छेड़ती हूँ, क्योंकि मुरली को लेंगी तो एक एक बात में हमारा तो बहुत विस्तार आता है, लेकिन इतना आप लोगों का ध्यान, मैं सिर्फ इसलिए पूछा कि इतना मुरली पर ध्यान, इसको कहा जाएगा पुरुषार्थ। जिसमें बाबा ने बताया भाई बीज तो एक डालते हैं तो फल कितना आता है। तो एक तो हमको संगम युग पर प्रत्यक्ष फल कौन सा मिलता है पुरुषार्थ का, अतीन्द्रिय सुख खुशी जवाब हमारा हो गया। आज के मुरली का जवाब है अतीन्द्रिय सुख, ये हुआ प्रत्यक्ष फल। और बीज का फल बहुत मिलता है, वो फिर कौन सा मिलता है, वो कौन सा कितना मिला। जैसे बीज कितना डालते हैं, एक डालते हैं, थोड़ा समझो डालते हैं, फल कितना निकलता है, एक तो उसका झाड़ भी इतना निकलता है और झाड़ में एक बीज के फल कितने निकलते हैं, तो वो हमको कौन सा मिलता है, अभी फिर से आप लोग मुरली पढ़ना, मैं अभी नहीं बताती हूं, फिर से पढ़ना और मुझे टाइम मिला तो आज नहीं तो कल मैं फिर से पूछूंगी। और अगर इस प्रकार मैं प्रैक्टिकल कराऊं ना तो मैं समझती हूं एक का अगर मैं तीन क्लास भी करूं तो भी पूरा क्लियर क्लास पास नहीं होगा, इतना हम मुरली को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं, याद रखते हैं। याद रखना माना उस पर इतना अटेंशन हो जो ऐसी ऐसी बातें हमें बाबा के शब्दों में याद रहे, इसको कहा जाएगा जो सुनते हैं उस पर हमारा पूरा अटेंशन। सुना है मुरली हमको कैसे सुननी है, मुरली पर ध्यान कैसा देना है, सुना है ना, सुना है ना, कल परसों क्लास मैंने कराया था और वैसे कुछ गीता बहन ने भी इस पर समझाया था, पर अगर करते रहे फौरन तो आज ये रिजल्ट नहीं होता। ये रिजल्ट इसलिए है आपका पुरुषार्थ जो नॉर्मल है जो चलता आया है वहां पर, यहां पर भी एकदम से, भले आप कहेंगे अभी तो दादी दो तीन दिन ही हुआ है धीरे धीरे होगा, लेकिन अब धीरे का जमाना नहीं है, अभी अभी सुना और अभी अभी करो तो आपको भी प्रत्यक्ष फल मिलेगा। और अगर अभी अभी नहीं किया वो ही अपनी रूटीन चलाई तो फिर जल्दी नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट जल्दी हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो आगे चलते जाएंगे ना, और टॉपिक्स आती जाएंगी और उसमें समझानी आती जाएंगी। अगर पहली बातें बीत गई तो जब दूसरी बात आएंगी उसमें पहली बात आप कैसे पुरुषार्थ में ला सकते हैं। हम लोग इतना अटेंशन देते थे, बाबा ने आज जो कहा है उसको आज हमें अच्छी रीत से समझ करके और अपने प्रैक्टिस में देखना है कि उसकी रिजल्ट क्या है, फिर जो रिजल्ट अपनी पता चलती है उस अनुसार फिर हम अपना आगे का अटेंशन रखते, इसको कहा जाएगा वास्तव में पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द का अर्थ अध्यात्मक क्या है, पुरुष का अर्थ ठहरो ठहरो बोलो बोलो अभी तो फिर से बोलो, आत्मा ठीक से बोलो, पुरुष आत्मा को कहा जाता है, पुरुष और रथ पुरुषारथ बीच में आ जाता है, पर पुरुष रथ पर सवार होकर के आत्मा आई है किस लिए, कर्म क्षेत्र पर अपना पर, वो तो समझो पीछे एडिशन है, परंतु पुरुष और रथ, रथ पर सवार पुरुष आत्मा, तो सवार किस लिए हुई रथ पर, कर्म करने के लिए। तो ये हमें याद है पुरुषार्थ में अगर हम लगे हुए हैं तो हमें ये याद रहेगा कि मैं आत्मा रथ में सवार हो करके आई हूँ तो क्या करना है? जो मैं आत्मा हूँ, जैसी हूँ, जो मेरे लक्षण है, रथ के द्वारा मुझे ऐसे ही कर्म करना है ना। तो पुरुष माना आत्मा रथ पर सवार हो करके आई है क्या करने के लिए? आत्मा अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार कर्म करे। और वैसे जनरली पुरुषार्थ कहा जाएगा तो अटेंशन माना मेहनत कर, जो पढ़ाई पढ़े या जो भी काम करें उसको हम यथारथ रीति से, जिस अर्थ हो जैसा हो वैसा हम करें और उसकी ऐसी ही रिजल्ट निकालें, तो उसको कहा जाता है माना पुरुषार्थ। जो काम जिस प्रकार से दिया गया उसी के अनुकूल पूर्ण रूप से किया। बाकी अक्षर शब्द का अर्थ वो हम ये बताते हैं। और आप लोगों ने क्या कहा? आत्मा अर्थ, ये क्या बोला? पुरुष के अर्थ कर्म करना, तो आत्मा के लिए कर्म नहीं किया जाता है। हाँ, आत्मा आत्मा के अर्थ किया हुआ कर्म, ऐसे तो आत्मा के अर्थ किया हुआ कर्म नहीं होता है। आत्मा कर्म कराती है रथ के द्वारा। आत्मा के लिए अर्थ माना तो उसके लिए, तो आत्मा के लिए नहीं किया जाता है पर आत्मा कराती है। किसने? उषा बहन ने। वो होता है उसमें वो टॉपिक ऐसी होंगी तो उसके लिए ऐसे किया होगा और उसका भाव अर्थ यही होगा, आत्मा के अर्थ नहीं पर माना आत्मा मुझे याद रहे उसके लिए ये बताया होगा कि कर्म करती रहे। लेकिन हम इसका अर्थ रथ में सवार हुई आत्मा वो समझो कर्म करती है। चलो ये तो बीच में टॉपिक आ गई। बाकी आज का विषय हमको बोला गया है सूक्ष्म पुरुषार्थ। सूक्ष्म पुरुषार्थ अर्थात वो भी आज की मुरली में है। आज की मुरली अगर आपने ध्यान से सुनी है तो उसमें सूक्ष्म पुरुषार्थ बताया गया है। आत्मा की शक्तियां बताइए और बताओ, सूक्ष्म पुरुषार्थ बताया गया था आज की मुरली में। एक एक बोले और खुली दिल से बोलो, डर डर के नहीं बोलो। शुभ भावना रखना और शुभ कामना रखना। पीछे वाले जरा खुली दिल से बोलो, बड़ी आवाज से उठ के बोलो, सूक्ष्म पुरुषार्थ अर्थात। हाँ बोलो, तो सूक्ष्म पुरुषार्थ इसको ही कहा जाएगा जो हम अंदर आत्मा का अटेंशन अपने सूक्ष्म शक्तियों पर हो। मैंने उस दिन भी बताया था सूक्ष्म शक्तियां कौन सी है मुझ आत्मा की? मन और बुद्धि। तो हमारा अटेंशन अपने सूक्ष्म शक्तियों पर अर्थात मन और बुद्धि पर हो, बुद्धि की एकाग्रता। आज के मुरली में था श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता। आया याद? रूहानी लिफ्ट कौन सी बताई गई? श्रेष्ठ संकल्प। तो संकल्प ही हमारी रूहानी लिफ्ट है, चाहे तो हमें ऊंचा ले जाए चाहे तो हमें नीचा ले जाए। नीचे ले आने वाले संकल्प उसका विस्तार था, ऊपर ले जाने वाला संकल्प श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता। तो जब भी आप योग में बैठो, जब भी जिस भी समय, समझो ये 3 मिनट का योग हुआ अभी, इसमें आपका अंदर अभ्यास रहना चाहिए, अटेंशन। इसको कहा जाएगा सूक्ष्म पुरुषार्थ, सूक्ष्म में अटेंशन। जैसे समझो आज हमने मुरली सुनी, निराकारी स्टेज, साकारी स्टेज, निराकारी, आकारी और साकारी। चाहे कोई भी स्टेज लो, चाहे कोई शुभ चिंतन लो, चाहे कोई मुरली की कोई भी विशेष पॉइंट ध्यान पे रखो, पर योग में 3 मिनट के अंदर एकाग्रता किस प्रकार की रही? 3 मिनट हमारा विशेष इसलिए है, एकदम ब्रेक, फुल ब्रेक। हम ये बताते हैं ना, लाल लाइट स्टॉप, जो भी हमारा संकल्प चलता है स्टॉप हो। तो ये सूक्ष्म अटेंशन हमारा चाहिए बरोबर। हम अपने संकल्प को स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा समझो स्टॉप नहीं हुआ, किस प्रकार का चला, तो वो हम खुद ही संकल्प दें अपने को। बाबा ने कहा ना, अभी हम चाहें निराकारी स्टेज में, तो ये हम अपने से अभ्यास करें। चलो आज हमने ये सुना है, हम उस स्टेज में रहें, वो स्टेज मेरी बनी, नहीं तो उसके प्रति क्या, वो तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है ना, क्योंकि अटेंशन है हमारा, तो हमें पता चलेगा कि बनी या न बनी या उस पर क्या संकल्प चला। कम से कम अगर मैंने संकल्प किया कि मुझे इस स्टेज में रहना है, तो कम से कम उस स्टेज का ही संकल्प चलेगा ना, और तो संकल्प अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे ना। पर एक ही लेवल के चले या भिन्न 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 आते रहे, तो इसको कहा जाता है सूक्ष्म अटेंशन। अगर हमको अपने सूक्ष्म शक्तियों पर चेकिंग की आदत पड़ जाती है, वो हमको एक समझो रीत आ जाती है, विधि आ जाती है, तो उसमें आपको पुरुषार्थ बड़ा सहज लगेगा। क्यों सहज लगेगा? क्योंकि अंदर ही अंदर हम अपने को चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। सूक्ष्म में शक्ति है, स्थूल में शक्ति कम है। स्थूल में हम पुरुषार्थ की कोई भी रीत लेते हैं, समझो हम योग में बैठने का पुरुषार्थ करते हैं, टाइम निकालना पड़ता है, जब हमारी दिनचर्या फिक्स है, हम चाहे 1 घंटा निकाले नहीं निकाल सकते हैं, मिसला समझो, पर हमारा अटेंशन है, हमको कैसे भी करके 1 घंटा अपने योग की स्थिति रखनी है, अंतर्मुख अवस्था रखनी है। चाहे हम क्लास में बैठे हैं, चाहे हम काम कर रहे हैं, चाहे हम कहां भी है, पर अगर हमारा अंदर अटेंशन है, हम कहां भी वो अपना 1 घंटा तो क्या 2-3 घंटा अपना बना सकते। और अगर हम इस प्रकार अपने पर अटेंशन रखते हैं, अंतरक बाहर मुक्ता से थोड़ा अपन को दूर करते हैं। ये बात आप ऐसे समझो, समझो कोई भी चीज हमको छोड़नी है, कोई शरीर छोड़ता है कितना सन्नाटा हो जाता है ना। तो समझो जो बात हमारे से नहीं छूटती है और हम चाहते हैं कि हमें छोड़नी है, मानो उसको मार देना है, स्वयं को उस देह अभिमान से, उसी बात से मर जाना है। तो मरने की घड़ी में क्या होता है, मर गए सनातन चाहिए। तो माना हम अंदर से एकदम उसके प्रति दृढ़ हो जाएं और ऐसा सनाता माना इतनी अंतर्मुखता हमको उस बात के लिए जागृत रहे, इससे छूटना। जब ऐसी अंदर हम पुरुषार्थ की अपनी स्टेज बनाते हैं, और इसमें थोड़ा पहले टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, परंतु जब समझो ये करते करते हम उस लेवल पे आ जाते हैं, फिर हमको कोई भी बात को छोड़ना या अपने को किस बात में परिवर्तन करना है, हम सहज अपन को कर सकते हैं। ये जो हमारी दलील बाजी है, ऐसा ना हो, ऐसा ये ना हुआ, ये हो तो ये हो सकता है, पुरुषार्थ में ये सहूलियतें चाहिए, माना जो भी बातें आती है, क्योंकि संगठन है ना, उसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, अपने अपने पार्ट के अनुसार किसको कैसी सहूलियतें है, किसको कैसी सेवा है, किसको कैसा है। लेकिन पुरुषार्थ तो मेरा मेरे अंदर से है ना, आत्मा को कंप्लीट बनना है, मुझे कंप्लीट होना है। जैसे आज भी मुरली में था ना, ये सब बातें आती है, क्यों लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्यों को छोड़ के, क्यों का क्वेश्चन छोड़ के मुझे क्या करना है। अब जो भी हुआ, चलो विघ्न आया, स्मृति स्वरूप रहे ना, क्यों आया सोचने का जरूर नहीं, क्यों आया सोचते हैं तो फिर और बातें आती है, ये नहीं होता, ये आया तो ये हुआ, ये आया तो ये विस्तार है उसका बहुत। और क्यों आया को सोचने लग जाएंगे तो निवारण को कब सोचेंगे। अब तो सिर पे दुश्मन खड़ा है, हम कहें इसने सर के ये क्यों खोल दिया दरवाजा जो आ गया, अगर उसको ही डांटने लग जाएंगे ये नहीं खोलते तो नहीं आता, दुश्मन तो सवार हो गया ना। अब दुश्मन को हटाएं या उसको डांटते रहें, क्या करना है, दुश्मन को हटाना है ना। तो ये बाबा हमें सिखाता है कि चलो जो भी आ गया, और उसकी कितनी विशेष बात बाबा ने बताई, अथॉरिटी की, कौन सी अथॉरिटी बताई, हाँ पर कैसे शक्तियां यूज होंगी, शक्ति इमर्ज हो जाए उसके लिए क्या बताया, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और ये तुमको स्मृति आनी चाहिए। दो प्रकार की स्मृति, एक बाबा ने बता दिया है, ये तो आएंगे तो हम पहले से जानकार है तो अथॉरिटी आ जाती है, नॉलेजफुल बन जाते हैं, जब नॉलेजफुल है तो पावरफुल है। तो देखो ये सूक्ष्म बात है, इस रीति से अगर हम सूक्ष्मता से अपने पर ध्यान देते हैं और बाबा हमें क्या बोलता है, उसमें क्या भाव है, कैसे उससे अथॉरिटी हम अनुभव कर सकते हैं, इसको कहा जाता है वास्तव में मुरली का अध्ययन। देखो बाबा ने हम बच्चों को में ये टेव डाली है और हम लोगों में ये समझो एक नेचुरल हो गया है, समझो जो आज मुरली सुनी, सारे दिन में हम जो बात करते हैं, चाहे क्लास कराते हैं, चाहे बात करते हैं, चाहे किससे मिलते हैं, मुरली हमको जरूर रेफरेंस में आनी चाहिए। ये अंदर का अटेंशन, तब तो माना जाएगा कि भगवान ने जो पढ़ाया, भगवान के महावाक्य भूलते हैं क्या, समझो हमको भूल भी गया, समझो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, चलो इधर उधर, पर अगर मेरा ये अटेंशन है और ये मैंने विधि बना दी है कि बाबा ने आज जो सुनाया है, मैं जिससे भी बात करती हूँ कोई भगवानो वाच्य जरूर मेरे मुख से भी वर्णन हो और उसको भी सुनाए, ये अंदर का अटेंशन पुरुषार्थ। और अगर इस पुरुषार्थ में हम सफल हो जाते हैं, माना ये विधि को अपनाते अपनाते फिर तो नेचुरल हो जाती है ना, फिर अपने आप चाहे आप याद करो न करो, मानो आज हमने ये याद नहीं किया था, मैं ये लक्ष्य नहीं रख के आई थी कि मुरली पर मैं क्लास कराऊंगी, परंतु बात करते क्योंकि ये विधि अपनाई हुई है कि बाबा ने इस पर क्या बोला, बोला हमने पहले ऐसे ही बात निकली ना, फल और उसकी समझो, पर आज के मुरली में भी बाबा की ये बात थी, तो क्या हो जाता है कि हमारे वर्णन में भी, जब वर्णन में बाबा के बोल आ जाते हैं तो जरूर है ना हमारे बुद्धि में वो बोल चलते हैं, वो महावाक्य चलते हैं बुद्धि में, तब तो हम वर्णन कर सकते हैं। अगर हमारे बुद्धि में बाबा के महावाक्य चलते ही रहते हैं तो हमारी बुद्धि इधर उधर जाएंगी, व्यर्थ संकल्प आएंगे। ये एक सहज विधि है, क्योंकि बाबा हमको रोज रोज क्यों आके पढ़ाते हैं। और हम देखते हैं, आप अटेंशन देंगे तो बाबा के महावाक्यों में कितनी शक्ति भरी हुई है। तो बाप की शक्ति, जो हम कहते हैं हम अधिकारी बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो वो शक्ति कैसे आएंगी हमारे में? अधिकार बाप के शक्तियों का हमें तब मिलेगा ना, जब हमारी बुद्धि भी बाप जैसी बनती जाए, हमारी संकल्प शक्ति बाप जैसी हो, तब तो हमारे बुद्धि में वो शक्तियां ग्रहण हो सकती हैं। कोई शक्ति को खास आवाहन करता होगा, चलो हमको कभी करना भी पड़े, बाप तो नहीं करता है ना, वो तो ऑटोमेटिकली जैसा समय जहां जैसी शक्ति का काम चाहिए, जिसको जैसा सहयोग चाहिए, ऑटोमेटिक होता है। पर हमें बाप समान बनना है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहे हैं, हमें बाप से बाप के शक्तियों का अधिकार लेना है। तो अधिकार प्राप्त कैसे होता है? अधिकार प्राप्त करने की विधि क्या है? कौन सी खूबी पर अधिकार मिलता है? योग्यता के आधार पर। जब एबिलिटी है तो अधिकार आप ही मिलेगा ना, एबिलिटी के आधार पर ही अधिकार मिलता है। योग्यता है तो योग्यता के अनुसार हमें शक्ति मिलेगी ना, अथॉरिटी मिलेगी। मैं अगर बाप का आज्ञाकारी बच्चा हूं तो बाप की मेरे पर आशीर्वाद रहेंगी ना, बाप का मेरे पर प्यार बना रहेगा ना, तो बाप हमें स्वतः ही अपना खजाना देता जाएगा, अपना अंत देता जाएगा ना, या नहीं होगा ना ऐसा? तो मुझे क्या करना है? मुझे अपनी योग्यता को बनाना है। योग्यता बनाने की विधि कि जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, आत्मा की तो मुख्य शक्तियां यही है ना। आत्म अभिमानी हम तब मान सकते हैं जब सदा हमारे संकल्प में ये याद रहे कि हम किसकी संतान। परमात्मा की संतान आत्मा है, सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान है, रचता बाप की संतान मास्टर रचता है। तो रचता बाप, उसका रचना के ऊपर नेचुरल कंट्रोल है, तब तो उसको रचता माना गया। हम रचता के बच्चे हैं तो हमें भी कम से कम अपनी रचना पर तो कंट्रोल हो। तो मेरी रचना कौन सी? ये मन बुद्धि मेरी सूक्ष्म शक्तियां, मेरी रचना कौन सी? संकल्प मन हुआ ना, मन बुद्धि मेरी सूक्ष्म शक्तियां, वो तो आत्मा के साथ है। रचना भी एक रीति से कह सकते हैं, क्योंकि उसको हम कंट्रोल करते हैं, पर रचना जो कुछ हमारे कर्मों में आता है, वृत्ति, दृष्टि, बोल, कर्म, ये सारी मेरी रचना। इस रचना का आधार मेरी सूक्ष्म शक्तियों पर, मन और बुद्धि पर। तो मैं मन बुद्धि की मालिक, मना है आत्मा मन बुद्धि सहित है, परंतु अब उसका काम अलग है। मन का काम संकल्प करना, बुद्धि का काम निर्णय करना, और बुद्धि का काम, और बुद्धि को स्मृति शक्ति भी कहा जाता है। आप देखेंगे स्मृतियां हमें है पुरानी, जितनी भी जीवन हमारी पास हुई, जो कुछ प्रसंग हमारे जीवन में हो चुके याद है ना, चाहे हम उसको इमर्ज करें या न करें, समाये हुए है ना, किसमें समाये हुए हैं। तो याददाश्त शक्ति वो भी बुद्धि को माना जाएगा ना। वैसे कहा जाता है मन संकल्प शक्ति है और बुद्धि निर्णय शक्ति है, फिर मन और बुद्धि का क्लैश चलता है आपस में, ऐसे होता है ना। बुद्धि कहती है ये नहीं करो, मन निर्णय है, निर्णय ज्ञान के आधार पर करती है बुद्धि। वास्तव में बुद्धि स्मृति की शक्ति है, माना जो कुछ हमारा किया हुआ है, जैसे मानो हमने अनेक जन्मों में जो कर्म किया है उसका एसेंस संस्कार बन जाते हैं। संस्कार क्या है? तो ये मन बुद्धि संस्कार तीन प्रकार से कहा जाता है, परंतु काम जो होता है मन और बुद्धि करती है। तो बाबा ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है जो मैं आत्मा हूं मन बुद्धि सहित, परंतु मैं स्वयं को जब जान लेती हूं तो मेरा संकल्प, मेरी बुद्धि, मैं जो हूं जैसी हूं, मैं कौन हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, कैसी हूं, परम पवित्र पिता की संतान, पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। तो मेरा संकल्प और मेरी स्मृति कैसी होनी चाहिए? शुद्ध और श्रेष्ठ होना चाहिए। जब हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है, समझ में आ जाती है, तो हम अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं। पुरुषार्थ का सहज शब्दों में अर्थ कहो तो अटेंशन है, पुरुषार्थ माना अटेंशन। परंतु अटेंशन वो जो यथारथ है वो ही हम करें। तो अब हमें स्वयं का पता चला है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा शुद्ध संकल्प क्या होना चाहिए मेरे अंदर। इसलिए बाबा हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं। बच्चे स्मृति आई, क्या स्मृति दिलाते हैं? तो देखो हमारा मन बुद्धि दोनों रीति से काम करते हैं। अभी जो बाबा स्मृति दिलाते हैं उस रीति भी काम करता है, जो उसमें भरा हुआ है वो भी अपना काम करते हैं। परंतु अगर अभी की पावर अधिक है, आत्मा जागृत है, वो कहते हैं ना कुंडली जागृत हो जाती है, तो जब आत्मा की स्मृति जागृत है तो जो प्रीवियस भरा हुआ है वो अंदर ही अंदर मर्ज हो जाता है। फिर वो संकल्प में हलचल नहीं करता। जब अभी की स्मृति जागृत नहीं है तो प्रीवियस स्मृतियां दे अभिमान की, या जो कुछ प्रसंग हो चुके हैं जिनों से संबंध संपर्क है वे काम करते हैं, जो हमारे संकल्प की हलचल होती है, विपरीत संकल्प। चलो विपरीत नहीं कहो, माना जिसका कुछ काम नहीं होता है। लेकिन अब जब हमें स्मृति आई तो स्मृति की शक्ति से हमें संकल्प की, हमारी प्रीवियस स्मृति नहीं उत्पन्न हो, अर्थात अभी की स्मृति के आधार पर हमारा संकल्प सदा श्रेष्ठ और शुद्ध चलता ही रहे। अब सारा समय, क्योंकि हम अधिकतर ये कहते थे ना
कि मन संकल्प के सिवाय नहीं रह सकता है, कहते हैं ना हम लोग, कहते हैं ना। यूं तो अभी ये अनुभव है कि हम संकल्प के सिवाय रह सकते हैं, परंतु जब इतनी शुद्धता आ जाए तो जब तक आत्मा शुद्ध बन जाए, अशुद्धता हमारे से खत्म हो, उसके लिए ये हमें संकल्प, हम योग में कमेंट्री क्यों देते हैं, संकल्प देते हैं चलाते रहो चलाए भाई, ऐसे ही नहीं योग लगता है तो ये संकल्प देते हैं, अंदर में ये संकल्प करो और इस संकल्प के आधार पर संकल्प के अर्थ स्वरूप में स्थित होते जाओ। तो अभी के जो बाबा हमें संकल्प देते हैं, इसलिए देखो हमारे लिए ये बड़ी सहज विधि है जो बाबा रोज रोज हमें बताते रहते हैं। भक्ति मार्ग में इसका यादगार है जो मंत्र दे देते हैं, एक मंत्र बेचारा रटते रहते हैं तो मन लगता ही नहीं, मंत्र रटता रहे, मुख मंत्र बोलता रहे और मन अपना काम करता रहे, भागता रहे, तो मंत्र से की भी शक्ति काम नहीं कर, क्योंकि एक ही संकल्प है और मन को चाहिए वैरायटी, क्योंकि आदत पड़ी हुई है उसको सब तरफ भागने की। आंखें देखती है तो भी मन सोचता है, मुख बोलता है तो भी मन सोचता है, संकल्प चलता है, कान सुनता है तो भी मन संकल्प करता है, होता है ना। तो इसको साफ तरफ भागने की आदत पड़ी थी, अब ये मैं आत्मा जानती हूँ, तो जैसे कि मुझे पता है कि इसकी आदत क्या है, माना मैं इसकी मालिक हूँ, मालिक हो करके हम अपनी संकल्प शक्ति को, चलो भाई हम कितना याद करेंगे बाबा ने क्या क्या बताया, बाबा रोज रोज बताते हैं, रोज की मुरली से सारे दिन में चलो कितनी पॉइंट्स हमको मिल जाती है, एक बात छूटी तो दूसरी, तो ये हो गया शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प के आधार से हमारी स्मृति, आदि अनादि स्वरूप की स्मृति जागृत होती है। जब स्मृति जागृत हो जाती है तो संकल्प अपने आप परिवर्तन हो जाता है, फिर इधर उधर के संकल्प अधिक नहीं आते, और ये जो हमारे शुद्ध संकल्प है, फिर शुद्ध संकल्प श्रेष्ठ संकल्प बन जाता है। श्रेष्ठ संकल्प अर्थात संकल्प पूछा, उनके आधार पर श्रेष्ठ कर्म हुआ, जो श्रेष्ठ कर्म हुआ जैसा कर्म, क्योंकि भगवान के यज्ञ में हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल केवल इस जन्म के लिए नहीं परंतु 21 जन्मों के लिए नहीं, ये है एक का अनेक गुना। करते यहाँ है, एक जन्म में करते हैं, एक समय पर करते हैं, उसका फल अतीन्द्रिय सुख अभी मिलता है, और भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख संपत्ति सब कुछ मिल जाता है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी बन जाते हैं, जो कुछ रहता ही नहीं जिसको पाने की इच्छा उठे, तो एक का अनेक गुना मिल जाता है, प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, प्रत्यक्ष फल के साथ साथ एक का हजार गुना लाख गुना कहें तो हमको मिल जाता है, 21 जन्मों के लिए पूरी प्रारब्ध हमारी बन जाती है। इसके लिए हमें सूक्ष्म पुरुषार्थ, सूक्ष्म पुरुषार्थ का अर्थ पीछे वाले बोलो, हाँ पीछे कहाँ कहाँ की बहने बैठी है, धीरे धीरे सुनते सुनते शांत हो जाते हैं, हाँ चेहरे से सुनने की रौनक नहीं दिखाई पड़ती है, जब हम सुनते हैं ऐसी बातें तो हमारे चेहरे पे खिला हुआ चेहरा होना चाहिए, आंखों में नैनों में वो रौनक आनी चाहिए, कुछ हमको अच्छी बात मिल रही है, मेरे पसंदी की बात मिल जा। जब कोई अपने पसंदी की बात मिल जाती है तो कैसा होता है, नैन चैन कैसे बन जाते हैं। तो ऐसे नैन चैन बन जाने चाहिए, नहीं बनते हैं माना कान सुन रहे हैं, बुद्धि समझ रही है, परंतु ग्रहण करने की शक्ति काम नहीं करती है। जब ग्रहण करने की शक्ति काम करती है तो नैन चैन चेहरा बदल जाता है, और जब ग्रहण करने की शक्ति काम करती है तो अपने चलन में परिवर्तन आ जाता है, फिर उसकी खुशी हमारे अंदर पुरुषार्थ का उमंग पैदा करती है, और फिर वो उमंग हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाता है। एक तरफ तीव्रता और एक तरफ दृढ़ता, दृढ़ता से फिर हमारा पुरुषार्थ चलता ही रहता है, और फिर पुरुषार्थ की विधि ऐसी बन जाती है जो जैसे कि हमारे लिए एक नेचुरल हो जाता है। हमें फिर मेहनत मुश्किल ये बातें हमारे से खत्म हो जाती है, पर पहले हमको ध्यान देना ही पड़ता है। इसको कहा जाएगा अपना सूक्ष्म अटेंशन। अगर हमको सूक्ष्म पुरुषार्थ की तेव आ जाती है, विद्धि आ जाती है, तो हम कभी भी पुरुषार्थहीन नहीं बन सकते। सदा हमारे अंदर उमंग और हुलास बना रहेगा, क्योंकि जब पुरुषार्थ की विद्धि आ जाती है तो हर बात से हम अपनी नवीनता खोज ही लेते हैं। हर रोज बाबा हमें बताते हैं तो बाबा की नए नए प्रकार से महानता हमारे अंदर जागृत होती रहेगी, याद आती रहेगी, और वो महानता हमारी लगन को बढ़ाती जाएगी। आज बाबा ने क्या बोला, लगन को बढ़ाने के बजाय लगन को हटाते हैं। क्या हटाते हैं, ये अनेक प्रकार के संकल्प, क्योंकि जो क्यों लग जाती है, कारण को हम खोजने लग जाते हैं, वो हमारी लगन को बढ़ाते नहीं, हमको आगे नहीं बढ़ाते हैं, परंतु हमें बाबा की लगन से हटाते। तो जितना जितना हम पुरुषार्थ की, पुरुषार्थ कहते हैं तो कभी कभी कोई कहते हैं सदा तो नहीं पुरुषार्थ करते रहना है, आखिर भी तो जीवन है ना, मौज से रहना है, मौज से रहो ना, सदा उमंग में रहो, आपको मौज ही मौज नजर आएंगे। उदास होते हो तो लगता है मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उदासी किसको अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको हटाने का फिर यत्न किया जाता है, फिर कभी स्थूल से कभी सूक्ष्म से। उदासी के समय सूक्ष्म पुरुषार्थ याद ही नहीं आता है, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मायूस है। जब मन मायूस है माना दिल शिकस्त है, मन के अंदर शक्ति नहीं है शुद्ध संकल्प को चलाने की। तो जब शुद्ध संकल्प की शक्ति नहीं तो फिर मायूसी कैसे खत्म होगी, पुरुषार्थ कैसे होगा। इसलिए सदा ये प्रयत्न रखना है कि हमारे में उदासीनता, कोई भी बात में हम शिकस्त, दिल शिकस्त न हो जाए, हीनता का भाव हमारे अंदर जागृत न हो। हम ये नहीं कर सकते हैं, मेरे लिए ये मुश्किल है, फौरन हम अपने को स्मृति दिलाए हम तो सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। जब बाप हमारे से इतना विश्व कल्याण का कार्य करा रहा है तो क्या ये हम नहीं कर सकते। चलो उसके लिए कुछ सीखना है, कुछ समझना है, हम मदद ले लेते हैं, लेकिन नहीं कर सकते हैं, ये अपने मन के अंदर नहीं लाना चाहिए। ये भी तो हम संकल्प लाते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं, संकल्प आता है ना। तो हमेशा हमको शुद्ध संकल्प करना है, सकारात्मक संकल्प करना है, वो संकल्प करना है जिससे हमारा उमंग बना रहे, वो संकल्प करना है जिससे हमारे में शक्ति बढ़ती जाए। ऐसी बातें अपने अंदर अपने को बार बार याद दिला करके पक्की करा। अगर शुरू में आप अपना ऐसा फाउंडेशन बना देते हो, चाहे आगे चल के कितनी भी बातें आएंगी, कभी भी आप दिल से कष्ट नहीं होंगे, आपके सामने वो उसका रास्ता निकल आएगा, क्योंकि उमंग में है, खुशी में है, अपने में विश्वास है। तो ये विश्वास, और ये विश्वास कौन सा है? सर्वशक्तिवान की संतान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। विश्व कल्याण का कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया, इतना बड़ा कार्य जो कोई नहीं कर सकता है, वो अगर बाबा हमारे में उम्मीद रखता है और हमारे से कराता है, तो हम क्या नहीं कर सकते। ये अपने को हिम्मत देने के संकल्प, उल्लास बढ़ाने के संकल्प है। सारा मदार, जीवन का मदार संकल्प पर ही है, हमारा ही संकल्प, अपना ही संकल्प। और अगर याद करे अपन कौन, आत्मा हूँ। आत्मा कौन, किसकी संतान, तो संकल्प कौन सा? घड़ी घड़ी अपने को ये याद दिला। अभी तो ये भी अपने को याद दिलाने की आपको फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि ये अभ्यास नहीं किया हुआ है, मन डाला हुआ है। हम लोग तो कदम कदम पर, पल पल पे अंदर में, क्योंकि ये तो अंदर की बात है ना। सूक्ष्म में क्या है वो अपनी बात अपने को पता, सूक्ष्म में क्या करना है मेरी बात मुझे पता, मुझे ये अंदर में संकल्प पक्का रखना है, ये हमें अपने अंदर निश्चय कर लेना। और चलते फिरते चाहे अपने से पूछो, चाहे अपने को याद दिलाते रहो, चाहे अपने से कराते ही जाओ, और इसको ऐसा बना दो जैसे श्वास अपने आप चलता है, ऐसे हमारा ये शुद्ध संकल्प अपने आप चलता रहे, चले जरूर, क्योंकि चलता है तो जिंदा है, आत्म अभिमानी है। भले कहेंगे हमको थोड़ी कहना है, कहने की बात नहीं, संकल्प तो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म में नहीं तो और संकल्प चलते हैं, नहीं तो जो कुछ देखा संकल्प चलता है ना, किसके लिए अच्छा किसके लिए बुरा चलता है ना, तो हम दूसरे के लिए क्यों उठाएं संकल्प, हम क्यों नहीं अपने श्रेष्ठ संकल्प शुद्ध संकल्प इमर्ज करते रहे, तो हमारे अंदर शक्ति बढ़ती रहे। हमारे में शुरू में नशा क्यों रहता था, सारा समय हम इन्हीं चिंतनों में, आपस में बात करेंगे तो भी ऐसे करेंगे, एक दो को हिम्मत बढ़ती रहे, अपने से बातें करेंगे एकांत में बैठ करके तो भी यही अपने को याद दिलाते रहेंगे, तो नशा चरा रहे। फिर वो अभ्यास पर जाता है तो अपने आप चलते फिरते अपने आप चलता है। जब तक ये अभ्यास नेचुरल हो जाए तब तक फिर हमको अंदर चलाना है, फिर इसकी अपने आप परीक्षा लेनी है, हम किसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, ये बात हमने क्यों बोली, क्या मेरे अंदर संकल्प ये चला था, फौरन अपने को ब्रेक, तो ब्रेक देना भी आ जाएगा, क्योंकि शक्ति आ गई ना। गाड़ी चलाते हैं कितनी भी तेज रफ्तार में होंगी, पर होशियार ड्राइवर जब ब्रेक देनी है, जब स्टॉप है तो स्टॉप करना है, कभी आराम से ब्रेक दे देता है चलाते चलाते धीरे धीरे, और कभी एकदम से ब्रेक देता है तो पीछे वालों को धक्का आता है। तो जो अंदर और चलते हैं उसको धक्का आएगा और संकल्प होंगे, पश्चाताप तो हो जाएंगे ना, और हमारी शक्ति तो बढ़ जाएंगी ना, हमें अपनी अथॉरिटी का पता तो चलेगा ना। और अगर ऐसे किया तो हमारी अथॉरिटी ऐसे दो चार बार करने से, क्योंकि बाबा तो हमें मदद करता ही है ना, लेकिन हमारा विश्वास और बाबा जो कहते हैं वो हम करते जाएं, शक्ति बढ़नी ही है। बाबा ने हमको अपना बनाया है तो हमें शक्तिशाली उनको बनाना ही है, पर बनेंगे तो भी क्वालिटी देखी जाती है ना। बाबा ने मिसाल देता है, भिरमिरी कीड़े को ले आती है, ले तो कीड़ा आती है ना, कोई बनता है कोई नहीं बनता है, पर वो तो अपना काम करती रहती है ना, तो हम अपना काम करते रहे, हम अपने अंदर जो भी संग चलो समझो कुछ देखा संकल्प चला भी, हमारा काम उसको परिवर्तन करना, हमारा काम सारा टाइम अपने मन को देखते रहना, माना संकल्प शक्ति को शुद्ध बनाने का कार्य मेरा चलता ही रहे जब तक वो नेचुरल शुद्धि में आ जाए। तो इस करने से आपको अंदर में बड़ी अथॉरिटी महसूस होगी, फिर आप रियलाइज कर सकेंगे कि बरोबर ये जो कहा जाता है मैं मात्र सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, उसकी क्या शक्ति है। और जब हम अपने पर अपने को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर और कोई बात मुश्किल नहीं लगती। कहा जाता है ना, वैसे विश्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्वराज्य अधिकारी ही, देखो स्लोगन तो याद है, तो स्वराज्य अधिकारी बनना है ना, स्व को अथॉरिटीवान मालिक शक्तिशाली बनाना है, अर्थात आत्मा जो है जैसी है सदा शुद्ध पवित्र और दिव्य, ऐसा ही स्वयं को बना देना है, अर्थात सूक्ष्म। तो मैंने आप लोगों को आज कोई स्थूल पुरुषार्थ की युक्तियां नहीं बताई, ये करो ये करने से ये होगा ये करने से ये, वो तो बहुत सुनी हुई है और आप लोग भी बता सकते हैं, पर आत्मा की शक्ति अपने सूक्ष्म शक्तियों पर कंट्रोल रखे, कंट्रोल नहीं कहा जाए, माना उसको हम मैं जो हूं जैसा हूं वैसा बनाए। कभी शब्द का भाव अलग अलग भी आता है ना, हम कहें इसको हमको कंट्रोल में रखना है तो उसका रिएक्शन हो जाता है, तो मन भी तो बड़ा उस्ताद है, इतना समय तो राज किया है ना अपने पर, जैसा मन कहे वैसा ही करना है, अपनी शक्ति काम नहीं करती, तो हम उसको कंट्रोल में नहीं रखते हैं, हम उसको श्रेष्ठ बनाते हैं, हम उनको शुद्ध बनाते हैं, और शुद्धता की विधि बड़ी सहज, हम तो उसको भगवान से, जो भगवान का खजाना है वो उनको देते हैं, तो भगवान का खजाना कौन नहीं लेगा, भगवान के खजाने में कितना खजाना भरा हुआ है ये तो हर एक समझ सकता है ना, तो मन को भी ऐसा लुभायमान करना है, ये है अंदर ही अंदर अपने से कन्वर्सेशन करना, अपने को वैसे तो देखा जाए तो लुभायमान वगैरह ये जरूरी नहीं है, पर कभी कभी नहीं हम भेद करते हैं, मन ऐसा है जैसे चंचल बच्चे के समान, उसको उसी प्रकार से समझ के चलाओ, मालिक बन जाओ उसका, ये भिन्न भिन्न तरीके हैं। बाकी अगर सीधी सादी भाषा में कहा जाए तो मैं आत्मा, मेरी ये शक्तियां, जब मेरी शक्तियां हैं तो जैसा मैं वैसी मेरी शक्तियां काम करे, जब मुझे स्मृति आ गई मैं परम धाम निवासी, परम धाम निवासी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, कितनी पवित्र है, जब पहले पहले सृष्टि पर आती है तो एकदम दिव्य सर्वग्रह संपन्न थोला कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी शरीर मिलता है, इतनी तो मैं आत्मा की शक्ति है, ऐसी ऐसी बातें अपने अंदर में अपने को याद दिलाओ, घड़ी घड़ी अपने से ये बातें करो और अपने अंदर बाप की शक्ति जागृत करके बाप की आशाएं, चाहे कहें स्वयं की आशा को, स्वयं ही स्वयं के शक्ति से पूर्ण करो। ओम शांति। श्रीमत पर चलना, श्रीमत पर चलने की सहज विधि है, उसकी सहज विधि बताओ। हाँ, श्रीमत पर चलने की सहज विधि है, जो हमारी बनी हुई दिनचर्या और जो हमारी मर्यादाएं हैं, जो ईश्वरी नियम और मर्यादाएं हैं, उनको पूर्ण रीति से पालन करते चल, बस फिर कोई भी हलचल नहीं आएंगे। पालन करने के लिए दृढ़ता, चाहे कितनी भी अपोजिशन हो, परंतु पालन करके चलना है, ये है सबसे बड़े से बड़ी सहज। आप सोचो, हम जब यज्ञ में थे, कौन सी सेवाएं करने हम लोग निकलते थे, कहाँ हम भाषण करते थे, कहाँ ये सब था, फिर कैसे बाबा ने हमारे में शक्ति भरी। बस यही दिनचर्या बाबा ने बना दी, एक्यूरेट दिनचर्या पर हम चलते रहे, नियम से चले, संयम से रहे और जो कहे करते चले, तो आज बाबा के कार्य के लायक बन सके। सबसे सहज से सहज विधि, बच्चा आज्ञाकारी कैसे बनता है, कैसे कहा जाता है, ये आज्ञा का पालन करते चले। बस जो बाबा ने हमारे लिए दिनचर्या नियमित बनाई है,